समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। आज का ये अंक लेकर हम उपस्थित हैं स्टूडियो में आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
नमस्कार देवेंद्र, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Listeners, we are here yet again with our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we shall bring for you the latest in national and international news, metro city updates, some historical information related to today's day, that is 11th of May. And also let us share with our listeners, Devendra, that today is World Migratory Bird Day and National Technology Day. The details, of course, we shall take up later in the program. But let's first begin with the news headlines.
जी, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और झारखंड में चुनावी रैली करेंगे। वे आज कंधमाल, बोलांगीर और बारगढ़ में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ओडिशा की दो दिवसीय यात्रा पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे। श्री मोदी हैदराबाद में कल एलबी स्टेडियम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के पास पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में कई समस्याओं का समाधान करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास अपने पिछले कार्यकाल के दौरान विरासत की राजनीति और भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड है। श्री मोदी ने लोगों से वोट देने के लिए किसी भी पार्टी को चुनते समय सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि देश अगले महीने की 4 तारीख को जीतेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 3 तलाक का विरोध किया, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया, उन्हें हारना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था जैसे हर क्षेत्र में अपने आप को सशक्त किया है और ये मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। श्री मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आतंकवाद वापस आ जाएगा और कांग्रेस देश को जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर बांट रही है। महाकाव्यों और उपनिषदों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का विचार वसुधैव कुटुम्बकम, सत्यमेव जयते, बुद्धम शरणम गच्छामि और अहिंसा परमो धर्म है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाकरेकल में प्रचार किया। उन्होंने उपलब्धियों और घोषणा पत्र के बारे में नहीं बोलने के लिए भाजपा की आलोचना की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शादनगर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने सिरसिला में एक रोड शो किया और आज शाम सिद्दीपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे।
इन गुजरात रीपोलिंग विल बी हेल्ड एट Prathampur polling station under the Dahod Lok Sabha seat today. The voting commenced at 7 in the morning and will end at 6 in the evening. The Election Commission had ordered fresh polls at Prathampur polling station in Santrampur Taluka of Mahisagar district after irregularities were reported in the polling on the 7th of May. The decision was taken based on the irregularity report filed by the returning officer after receiving a complaint over a viral video. 6 persons were suspended, including 4 from the polling staff on duty on polling day at Prathampur polling booth.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कल शाम तिहाड़ से रिहा हो गए। जमानत शर्तों के अनुसार श्री केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। वे आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो।
India has voted in favour of a draft UN General Assembly resolution supporting Palestine's bid to become full UN member. The 193-member General Assembly yesterday met for an emergency special session where the Arab group resolution in support of the State of Palestine's full membership in the United Nations was presented by the United Arab Emirates. The resolution said Palestine is qualified and should be admitted as full member of the UN and recommended that the Security Council reconsider the matter favourably. The resolution got 143 votes in favour, 9 against and 25 abstentions. Currently, Palestine is a non-member observer state at the UN. The status was granted to Palestine by the General Assembly in 2012.
भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का दुबई में आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मंजुला कला और गोंड कला सहित देश के कई क्षेत्रों के अल्पज्ञात कला स्वरूपों से लोगों को परिचित कराना है। क्यूरेटर विदिशा पांडे ने बताया कि बिहार में टिकुली और मंजुषा कला भी है, लेकिन लोग इनके बारे में कम जानते हैं। प्रदर्शनी में बिहार की मिथिला पेंटिंग, तमिलनाडु की कोलम कलाकृति, महाराष्ट्र की जनजातीय कला और केरल की विख्यात मुरली कला परंपरा मंडल कला थेरेपी को प्रमुखता से दर्शाया गया।
एमिर ऑफ कुवैत शेख मिशेल अल अहमद अल सबा हैज अनाउंस्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द सस्पेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अप टू 4 years, साइटिंग पोलिटिकल टर्मोइल। In a televised address yesterday, the Emir stated that recent upheavals had compelled him to take these actions to safeguard the nation's interests. Last month, the Gulf country conducted its 4th elections, with 39 of the 46 members from the previous parliament retaining their seats. The Emir declared that all facets of the democratic process will be thoroughly examined during the period of constitutional suspension. According to Kuwait's constitution, a new government must be formed within 2 weeks of an election. However, tensions between the elected parliament and the appointed prime minister have hindered such a formation since the 4th of April. On 15th of April, Sheikh Mishal appointed Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah as the prime minister and tasked him with forming a new government. Sheikh Mishal, who succeeded his half-brother in December, dissolved the previous parliament after a legislator made remarks deemed unconstitutional and parliament declined to censure him.
एक कूटनीतिक सफलता में तेहरान द्वारा हिरासत में लिए गए इजरायली जहाज पर सवार 5 भारतीय नाविकों को कल रिहा कर दिया गया। भारतीय दूतावास ने उनकी रिहाई का विवरण साझा करते हुए बंदर अब्बास में दूतावास और भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय के लिए ईरानी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इजरायल से जुड़े मालवाहक जहाज को 13 अप्रैल को ईरान ने कब्जा कर लिया था, जिसमें 17 भारतीय नाविक भी सवार थे।
After days of intense heat, a massive dust storm hit Delhi and the National Capital Region late last evening. The city witnessed winds with speed of over 50 kilometers per hour, which brought down many trees and big branches affecting traffic. 2 flights were diverted to Jaipur due to bad weather. In an advisory, IMD had urged people to stay indoors and avoid unnecessary travel.
Jee. और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रन से हरा दिया। गुजरात ने चेन्नई के सामने 232 रनों का लक्ष्य रखा, जवाब में चेन्नई की टीम 8 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 231 रन बनाए थे। और आज सवेरे में अब हम चलते हैं महानगरों की तरफ, तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं सरबजीत आपके पास?
दिवेंद्र, वील फर्स्ट शेयर द न्यूज फ्रॉम चेन्नई एंड इन फैक्ट वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज फ्रॉम देयर। द चेन्नई कॉरपोरेशन हैज इरेक्टेड ग्रीन पंडाल्स टू प्रोटेक्ट कम्यूटर्स हु ट्रैवल बाय 2-व्हीलर्स फ्रॉम द समर हीट। द पंडाल्स मेड ऑफ फ्रेश ग्रीन लीव्स वर सेट अप एट ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन आर्टरियल रोड्स इन चेन्नई। What a novel idea to beat the heat, Devendra. Moving on to Bengaluru now, the Brihat Bengaluru Mahanagarpalika has started preparing for the rains that bring with it many civic issues in Bengaluru. To avoid flooding and overflowing drainages, the municipal corporation has started cleaning up stormwater drains. To prevent waterlogging, the garbage clogging shoulder drains are being removed. The solar-powered water level sensors are installed on stormwater drains at 124 locations that will alert the Integrated Command and Control Center to rush quick response teams to prevent flooding. Out of 860-kilometer-long stormwater drains, 581 kilometers of such drains are reinforced with RCC sidewalls. The works are on to build RCC sidewalls on a 199-kilometer stretch. The municipal corporation has identified flooding-prone residential areas at 74 locations in Bengaluru. It has made temporary arrangements to prevent flooding of these areas when the city receives heavy downpours in the coming days. As the deadline for campaigning for the Lok Sabha elections approaches this evening, state election officials have increased their efforts to make all necessary provisions for a successful and peaceful poll. Following the request from the political parties, the election has extended polling time by 1 hour in most of the 119 assembly segments falling under the 17 Lok Sabha seats. Chief Electoral Officer Vikas Raj, who reviewed the arrangements with some senior officials, directed them to maintain close tracking of all forms of inducements to voters during the last 72 hours left for polling. Observers accompanied by officials concerned should conduct surprise night vigil and inspections in vulnerable areas in the expenditure-sensitive areas where there was scope for distribution of freebies like liquor. In some more news from Hyderabad in Telangana, Chief Electoral Officer CEO Vikas Raj has sought an explanation from the state Congress leadership over the usage of demeaning, personal, derogatory and vulgar language by Chief Minister and TPCC President A. Revanth Reddy against BRS President K. Chandrasekhar Rao during public meetings he was addressing earlier this month as part of electioneering. The CEO sought a reply to be submitted by the party leadership within 48 hours. He was responding to a complaint by BRS General Secretary M. Srinivas Reddy about the language being used by the Chief Minister, which was in violation of the Model Code of Conduct. Mr. Srinivas Reddy sought an appropriate action. And Devendra, what's the news that you're going to share from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी, शुरुआत करता हूं दिल्ली से ही, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव को लेकर इस समय गहमागहमी बढ़ गई है. राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं. इस बीच दिल्ली निर्वाचन आयोग ने स्वीप पहल के तहत राजधानी में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 की शुरूआत की है. इस नंबर के माध्यम से दृष्टिहीन मतदाता पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं. पश्चिमी जिला में युवा स्वयंसेवकों ने स्वीप अभियान के अंतर्गत लोगों को वोट देने की अपील की. निर्वाचन आयोग ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव जागरूकता गुब्बारा उड़ाया. इसके अलावा आयोग ने आदर्श नगर, मॉडल टाउन, शालीमार बाग और करावल नगर समेत अन्य क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी स्कूली बच्चों के लिए 23 मई से ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन कर रहा है. एनएसडी ने बताया कि इसमें 8 से 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं और ये कार्यशाला 15 जून तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी. इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. अधिक जानकारी के लिए एनएसडी की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं. और मुंबई का रुख करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार यानी आज से ही ठाणे में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग ने रविवार को बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की भी संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. रविवार और सोमवार के बीच मुंबई में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. मौसम विभाग ने कहा है कि रायगढ़ के लिए शनिवार और रविवार के बीच तूफान की आंधी की चेतावनी बनी हुई है. बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने आज दक्षिण मुंबई वार्ड ए के कुछ हिस्सों में 8 घंटे तक पानी की आपूर्ति बंद रहने की जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि जीवन बीमा रोड पर दोपहर 3:30 बजे से रात 11:30 बजे के बीच 1200 मिलीमीटर व्यास वाले जल चैनल की मरम्मत की जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप कोलाबा, कोलीवाड़ा और नौसेना क्षेत्र में जलापूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाएगी. बीएमसी ने कहा कि मरम्मत कार्य पूरा होने और जल चैनलों के बहाल होने तक नौसेना प्रतिष्ठान को नियमित जल वितरण में देरी होगी. बीएमसी ने यह बताया है कि मंत्रालय भवन के पास जीवन बीमा लाइन के करीब 1200 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन में रिसाव का पता चला था. ये रिसाव मेट्रो फेज 3 के काम के दौरान हुआ था. पालघर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसमें जिले के 6 स्थानों पर युवाओं के लिए युवा मतदान केंद्र, विकलांगों और महिलाओं के लिए विशेष मतदान केंद्र शामिल हैं. विक्रमगढ़ में कुतुर विहीर मतदान केंद्र को पालघर जिले की आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक केंद्र के रूप में तैयार किया गया है. पर्दा प्रथा का पालन करने वाली महिलाओं के लिए 14 स्थानों पर पर्दा नशीन विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं. इस पूरी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इन मतदान केंद्रों पर लगभग 2716 मतदान कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है. बोईसर के वसई विधानसभा क्षेत्र के अरनाला किला और पंजू में मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मतदाताओं के लिए 8 नावों की व्यवस्था की गई है. और कोलकाता का रुख करें तो बाग बाजार के गौड़ीय मिशन ने कल चंदन यात्रा उत्सव की शुरुआत की। ये उत्सव 30 मई तक चलेगा। भारत और अन्य देशों के शिष्य इस उत्सव में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर श्री कृष्ण वंदना का आयोजन किया गया है और पूरे परिसर को सजाया गया है। आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे देवेंद्र त्रिपाठी और सरबजीत कौर के साथ। कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है प्रमुख महानगरों के मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की करते हैं। और जैसा कि आपने सुना, सरबजीत ने बताया कि कल बहुत तेज आंधी आई थी और कुछ जगहों पर हवा की जो रफ्तार थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ था। और आज भी मौसम विभाग ने बादल छाने, गर्जना के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की है। आंधी भी चल सकती है और सुबह भी, सरबजीत, जब मैं घर से यहां के लिए निकला था तो रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि दिन में पारा 39 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुंबई में दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। कल से और बारिश की संभावना है, जैसा कि खबर में आपने सुना, और तापमान 28 और 35 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या बादलों की गर्जना के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है। और सरबजीत, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में मौसम कैसा रहेगा?
यस देवेंद्र, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्री। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Minimum temperature 21 degrees Celsius, maximum around 32 degrees. Hyderabad again is expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperatures will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का।
सो देवेंद्र, लेट्स बिगिन विथ शेयरिंग सम डिटेल्स ऑन द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डेट विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड टुडे। एंड इंटरेस्टिंगली देवेंद्र, दिस डे इज ऑब्जर्व्ड twice in a year, that is once in May and October, and this is because birds migration happens at different times in different parts of the world. That's the reason why this day is celebrated twice. This day is all about raising awareness for the birds and their habitats, and in fact we can think of it as a global shout out saying let's protect our migratory feathered birds and where they live. People everywhere get in on action by organizing fascinating events like bird festivals, educational stuff, exhibitions, and of course, bird watching adventures. It's like a worldwide party for the birds. This year, the theme revolves around insects. It's called Protect Insects, Protect Birds. And needless to say, this is because these flying travelers rely on insects big time during their epic journeys. Insects help them find their way and keep their energy up as they brave long and sometimes risky trips. And Devendra, besides the World Migratory Bird Day, today is also the National Technology Day. On this day, India celebrates its tech prowess and remembers the groundbreaking nuclear test at Pokhran in 1998. It's a nod to the country's achievements in science and technology. And in fact, it's not just about looking back, but it's also about looking forward. National Technology Day is about inspiring the next generation of tech wizards. We remember the quote from the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, to aim big and revolutionize the nation and the world through technology. As a young citizen of India, armed with technology and love for my nation, I realize a small aim is a crime.
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये परीक्षण 11 मई से शुरू हुआ था और 13 मई तक चला था। 1998 में ये परीक्षण हुआ था राजस्थान के रेगिस्तान में पोखरण रेंज में, और इसका लक्ष्य उन्नत हथियार डिजाइन कर परमाणु परीक्षण करना और भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न करना था। अन्य घटनाओं की बात करें तो 1998 में आज ही के दिन यूरोप की सिंगल करेंसी यानी एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का तैयार हुआ था। वर्ष 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब के पार पहुंच गई थी।
ऑन मई 11th 330 AD द सिटी ऑफ Constantinople was dedicated and became the capital of the Eastern Roman Empire, and 11th May 868 AD, the world's oldest surviving printed book, the Diamond Sutra, was printed.
जी, और न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया था वर्ष 2000 में. तो विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कह सकते हैं कि नई शुरुआत थी ये.
Yes, and on May 11th, 1997, IBM's chess computer Deep Blue defeated world chess champion Garry Kasparov.
जी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज ही के दिन वर्ष 2010 में कहा था कि पंचायत और स्थानीय चुनाव में राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है.
Besides the Pokhran test, Devendra, there were other two momentous occasions also which happened on this day. The second one was the successful test firing of the Trishul missile and the maiden certification test flight of Hansa 3, the first all-composite indigenous two-seater aircraft. And of course, on May 11, 2010, SpaceX's first Falcon 9 rocket was launched. This launch was a critical step in SpaceX's mission to revolutionize space technology with the ultimate goal of enabling human life on other planets.
जी, तो इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात हमने कर ली और अब बात करते हैं, याद करते हैं उन महान लोगों को जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है. और इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को जिनकी आज जयंती है. शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था. मृणालिनी साराभाई का जन्म भारत के केरल में 11 मई 1918 में हुआ था. उनके पिता डॉ स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट में बैरिस्टर थे. मां अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी थी जो बाद में देश की पहली संसद की सदस्य भी रहीं. बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ थीं. मृणालिनी ने बचपन का अधिकांश समय स्विट्जरलैंड में बिताया. यहां डेल क्रूज स्कूल से उन्होंने पश्चिमी तकनीक से नृत्य कलाएं सीखनी शुरू की. फिर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की देखरेख में शांतिनिकेतन में शिक्षा ग्रहण की और यहीं से नृत्य उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया. उनके पति विक्रम साराभाई देश के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे. उनकी बेटी मल्लिका साराभाई भी प्रसिद्ध नृत्यांगना और समाजसेवी हैं. मृणालिनी की बड़ी बहन लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानी जाती हैं. वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की महिला सेना झांसी रेजिमेंट की कमांडर इन चीफ थीं. भारत सरकार द्वारा मृणालिनी साराभाई को न सिर्फ पद्म भूषण बल्कि इससे पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगलिया नॉर्विच यूके ने भी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी थी. इंटरनेशनल डांस काउंसिल पेरिस की ओर से उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी नामित किया गया था. प्रसिद्ध दर्पणा एकेडमी की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की.
We are also remembering today Robert Nesta Marley, a Jamaican singer, guitarist and songwriter. Today is his death anniversary. Considered one of the pioneers of the genre, Marley fused elements of ska and rocksteady in his music and was renowned for his distinctive vocal and songwriting style. Marley's contribution to music increased the visibility of Jamaican music worldwide and made him a global figure in popular culture. Over the course of his career, Marley infused his music with a sense of spirituality. He is also considered a global symbol of Jamaican music and culture and identity. We have this number for you.
और अब बात कहानीकार और लेखक सआदत हसन मंटो की जिन्होंने 18 जनवरी 1955 में अपने जीवन की अंतिम सांस ली. मंटो फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे. मंटो की कहानियों की बीते दशक में जितनी चर्चा हुई है उतनी शायद उर्दू और हिंदी और शायद दुनिया की दूसरी भाषाओं के कहानीकारों की कम ही हुई है. अंतोन चेखव के बाद मंटो ही थे जिन्होंने अपनी कहानियों के दम पर अपनी जगह बनाई। सादत हसन मंटो की गिनती ऐसे साहित्यकारों में की जाती है जिनकी कलम ने अपने वक्त से आगे की ऐसी रचनाएं लिख डाली जिनकी गहराई को समझने की दुनिया आज भी कोशिश कर रही है। उनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं तमाशा, बू, ठंडा गोश्त, टोबा टेक सिंह, खोल दो, घाटे का सौदा, हलाल और झटका, खबरदार, करामात, बेखबरी का फायदा और पेशकश आदि।
Irving Berlin, today is his birth anniversary, American composer and lyricist. Berlin's music forms a large part of the Great American Songbook. Berlin received numerous honors, including an Academy Award, a Grammy Award, and a Tony Award. He also received the Presidential Medal of Freedom in 1977. We have this number called Blue Skies for you.
Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright.
और भारतीय थलसेना के तीसरे थलसेना अध्यक्ष एमएस श्री नागेश की भी आज जयंती है। इस पद पर वो 14 मई 1955 से 7 मई 1957 तक रहे। सेवानिवृत्ति के बाद एमएस श्री नागेश राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। एमएस श्री नागेश को नॉर्थ स्टैफोर्ड शायर रेजिमेंट में नियुक्त किया गया लेकिन जल्द ही उन्हें बर्मा, वर्तमान में इसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां भेजा गया। उनकी अगली नियुक्ति हैदराबाद रेजिमेंट में थी। 1939 में असम और बर्मा की लड़ाई में उन्होंने हैदराबाद रेजिमेंट की कमान संभाली। जनरल एमएस श्री नागेश ने बर्मा में 19वीं भारतीय डिवीजन की 64वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। 1945 में उन्हें जर्मनी में भारतीय सैन्य मिशन के उपप्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। जर्मनी से लौटने के बाद एमएस श्री नागेश ने जापान में 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली और मेजर जनरल की पदोन्नति पर उन्होंने मद्रास क्षेत्र के जीओसी का कार्यभार संभाला। 1948 में उन्हें नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में सभी सैनिकों के समग्र कमांडर का पद भी संभाला था।
लिसनर्स, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सदाशिव दत्तात्रेय अमरापुरकर। अ वेरी वेरी वर्सटाइल पर्सनैलिटी, विलनस रोल्स, comic hero and very well known for his performances in Marathi and Hindi films from the years 1983 to 2013. Amrapurkar acted in more than 300 movies in Hindi, Marathi and other regional languages. We managed to get this dialogue for you.
ये ब्लैंक चेक मेरा भी, मेरे लिए भी ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए।
Why not? अरे रंजीत, तुझे इसकी क्या जरूरत है?
अरे हरबू, जो डर तुझे है वो डर मुझे भी है, क्योंकि मेरा बेटा शराफत की मिसाइल है, मिसाइल।
एंड लिसनर्स, टुडे इज द बर्थडे ऑफ अमरिंदर सिंह गिल। He's actor, singer, songwriter, film producer, well known for his dint in Punjabi movies. Let's hear this song.
चल जिंदिए, चल जिंदिए, चल उठ चलिए, तुर चलिए, ए जहानो ओस नगर वल दूर कुड़े। मन मंदिर विच स्या हनेरा, करिए नूरो नूर कुड़े। चल जिंदिए, चल जिंदिए, चल।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक सागर सरहदी की भी आज जयंती है। उन्होंने कभी कभी, चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी। उन्होंने फिल्मों के संवाद लेखन और निर्देशन का भी काम किया। स्मिता पाटिल की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बाजार की न केवल सागर सरहदी ने कहानी लिखी बल्कि उसके निर्माता और निर्देशक भी थे। सागर सरहदी ने रंगमंच की दुनिया में फारूक शेख और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों को मौका दिया था। कभी कभी फिल्म का ये गाना आपके लिए।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया।
और इस खूबसूरत गीत के साथ ही हम चाहेंगे आप सभी से कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की अनुमति, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
यस लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात, आर हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट, फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार.